الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ کل یوم خمسین مرہ صافحته یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی. اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا. ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی. انسان اطاعت کرتا چلا جائے اللہ کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو سرخرو فرما دیتا ہے. اور یہی وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کو اچھے اوصاف کے ساتھ جب بسر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں، قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیں، قرآن کو اپنا رہبر بنا لیں، اپنا سورس آف گائیڈنس قرآن کو بنا لیں. قرآن کے ساتھ اگر ہمارا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا تو ہم قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن سمجھنے والے بن جائیں گے، قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، قرآن سمجھتے چلے جائیں گے، تو اس کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے کامیابی، ناموری اور سٹیٹس کا ایک ذریعہ ہے. قرآن سے عظمت ملتی ہے. جس نے بھی قرآن سے تعلق جوڑا، اس کو راحت بھی ملی، شفا بھی ملی، کامیابی بھی ملی، اسے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے روشنی بھی میسر آئی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو چیز ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. قرآن یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے لیے زندگی میں ناموری اور عظمت کا سبب ہے۔ جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا، اللہ جل مجدہ نے اسے اس دنیا میں سٹیٹس عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا، صرف دو سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، فرمایا کہ وہ شخص پھر ہماری نظروں میں قابل احترام ہو جاتا تھا، یعنی ہم اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے فلاں شخص قرآن کا حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے، قرآن سمجھنے والا ہے اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کا درس دینے والا ہے، اس کی عزت اس کا احترام ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سے تعلق بندے کو لوگوں کی نظروں میں با عظمت بنا دیتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے اور سنانے والا ہے، اور قرآن کی آیات بینات کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے اس کی عزت ہے۔ اور یہ صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی سورہ مبارکہ کا علم حاصل کر لو تو عظمت ملتی ہے، ناموری ملتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورہ مبارکہ بے مثل و بے مثال ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید میں ان دونوں سورتوں سے پہلے ہے، اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ ام القرآن ہے، یہ سورہ مبارکہ ام الکتاب ہے، یہ سورہ مبارکہ سورہ کنز بھی ہے، وافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، یہ سورہ دعا بھی ہے اور سورہ شفا بھی ہے، اس کے متعدد نام ہیں۔ اور کسی بھی چیز کے ناموں کا متعدد ہونا اس کی شرف اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، یعنی سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی زبور کے اندر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو رب نے وہ فضیلتیں، وہ شرف اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو اس دن سے پہلے کبھی آسمان سے پہلے نہیں اترا تھا، یہ پہلی مرتبہ آسمان سے نازل ہوا، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور ایک بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں عطا فرمائے، اور وہ دو نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے، یوں کہہ لیجئے کہ کسی نے الف لام میم پڑھا तो उसने तीन हर्फ पढ़े हैं, गोया 30 नेकियां उस बंदे के नामे आमाल में दर्ज कर दी जाती हैं। कितना फायदा है, कुरान सवाब भी अता करता है, शिफा भी देता है, कामयाबी भी देता है और बंदे को नूरानियत भी अता कर देता है, मगर हम तवज्जो नहीं देते। कुछ लोग तो थे जिनको दिन रात कुरान पाक पढ़कर लज्जत मिलती थी, लेकिन आज हमारा हाल कुछ और ही है। पहले के लोग थे, कुरान से बड़ी मोहब्बत होती थी, कुरान पढ़ा करते थे, कुरान का अदब बहुत ज्यादा करते थे, हर घर में कुरान पढ़ा जाता था, उनकी सुबह नमाज फजर से हुआ करती थी, और एक तादाद थी जो नमाज तहज्जुद में ही बेदार हो जाया करती थी, नमाज तहज्जुद अदा करते, फिर नमाज फजर पढ़ते, नमाज फजर और तहज्जुद के दरमियान में तिलावत कुरान होती, या फिर नमाज फजर के बाद तिलावत कुरान किया करते, हर घर में ही तिलावत होती थी। और वहां जब वो कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे, तो कुरान से मोहब्बत और बढ़ जाया करती थी। आज हमारा हाल इससे कुछ मुख्तलिफ है। हमारी ईमान वालों की, मुसलमानों की एक तादाद है जिनके घर में कुरान मजीद मौजूद तो है, लेकिन ताक में रखा हुआ है, उसे अपनी ही लाइब्रेरी की जीनत बना दिया गया है, और वहां हिफाजत से, अदब से एक ऊंचे मकाम पर रख दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि कुरान पढ़ने वाला घर में कोई नहीं है, कुरान जिनको आता है उनके पास वक्त नहीं होता, और जो कुरान पढ़ना जानते ही नहीं है, जिन्होंने सीखा ही नहीं, वो कुरान को क्या पढ़ेंगे? बस एक कुरान को अदब की जगह पर ऊपर रख दिया गया है, उसी के ऊपर गर्द पड़ रही है, और वक्त गुजरता जाता है, महीने, साल और कई कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, और एक मकाम है जहां कुरान रखा हुआ है, वहीं रखा रह जाता है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें वक्त निकालना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वक्त है मोबाइल पर एसएमएस देखने के लिए, एसएमएस लिखने के लिए, एसएमएस पढ़ने के लिए, मेल्स देखने के लिए, मेल्स पढ़ने के लिए और मेल्स आगे भेजने के लिए वक्त होता है। हमारे घरों में ख्वातीन को सजने सजाने से और फिर दीगर नावलों से फुर्सत नहीं होती। हमें कुरान के लिए वक्त देना है। कुरान अल्लाह का पाक कलाम है, ऐसी किताब है जिसकी मिसल कोई किताब नाजिल नहीं हुई। अल्लाह ने इस किताब को शर्फ व अजमत वाली किताब बनाया है, और शर्फ व अजमत वाले रसूल पर नाजिल फरमाई, और शर्फ व अजमत वाली उम्मत पर नाजिल फरमाई। हम हमारी उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान से मोहब्बत करनी है। कुरान जो पढ़ते और सुनते हैं वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, कुरान जो पढ़ने वाला है उसके दिल पर अजीब असरात मुरतब होते हैं, फिर कुरान पढ़ने को दिल करता है, बार बार दोहराए जाने से ये पुराना नहीं होता, इससे इंसान थकता नहीं, बार बार पढ़ने को दिल करता है, दिल में, रूह में, बदन में एक अजीब लज्जत उतर जाती है। जो सुना करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी जिंदगियों में तब्दीली आया करती थी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला नो जब ईमान लाए थे, क्या वो वाकया आपको याद नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम को माजल्ला शहीद करने के इरादे से घर से निकले थे, और किसी ने खबर दी, अपने बहनोई और बहन की खबर लीजिए, वो ईमान ला चुके हैं। घर पहुंचे, तिलावत कुरान की आवाज सुनते हैं और वो आवाज असर कर जाती है, फिर कहते हैं मुझे कुरान सुनाओ, और जब कुरान सुना है तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, और हाजिर होकर ईमान ले आते हैं, ईमान की दौलत से फैजयाब हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब ईमान वालों को चाहिए कि कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, क्योंकि कुरान पढ़कर शिफा मिलती है, दवा मिलती है, और हमारी दुआएं इसकी बरकत से कबूल हो जाती हैं। जरा सोचिए कि हम गलती पर हैं या नहीं। कोई कहता रहे कि मुझे प्यास लगी है, और प्यास तो पानी पीने से ही बुझती है, पानी भी मौजूद हो, वो फिर पानी ना पिए और ये कहता रहे कि मुझे प्यास लगी है तो क्या प्यास बुझ जाएगी? हरगिज ऐसा नहीं होता। कुरान पास रखा हुआ है, और कोई दुआएं करता रहे, अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरे दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाजिल हों और मेरे वजूद में कुरान की लज्जत पैदा हो जाए, और कुरान पढ़े भी ना, ये कैसे हो सकता है? कुरान पढ़िए, कुरान किसी उम्र का मोहताज नहीं और किसी उम्र में बंदे को मायूस नहीं करता। जवानी में पढ़ें, बचपन में पढ़ें, बुढ़ापे में पढ़ें, जो पढ़ने लग जाते हैं कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेते हैं। कुरान की चाशनी, उसकी लज्जत, उसकी शीरीनी बंदे के रूह और वजूद में उतरना शुरू हो जाती है। हमारे यहां एक अलमिया है जो पढ़ने लग जाता है, वो ये समझने लग जाता है कि मैंने पता नहीं कौन सा एक बड़ा काम कर लिया है। फिर उसकी रियाकारी और दीगर बहुत से ऐसे मज़मूम औसाफ में मुबतला हो जाता है कि जिससे अल्लाह ने मना किया है। याद रखिए, शैतान ईमान वालों का खुला दुश्मन है। अल्लाह की तात और इबादत से बंदे को रोक कर उसे गुनाह में मुबतला करता है। वहीं पर यह शैतान बंदे से कभी अमल करवा कर भी उसे गुनाह में मुबतला कर देता है। कैसे? हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैह रहमतुल्लाहिल वाली आप इरशाद फरमाते हैं कि शैतान मुख्तलिफ अंदाज से इंसान को बहकाने और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और फरमा बरदारी से रोकने की कोशिश करता है। शैतान का पहले जो इंसान पर वार होता है, वो ये वार करता है कि बंदे को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और ताअत से रोकने की कोशिश करता है। गोया नमाज से रोक रहा है, रमजानुल मुबारक की दौलत मिली, रमजानुल मुबारक के रोजों से रोक रहा है कि तुझे भूख लग जाएगी, मुख्तलिफ वसाविस में मुबतला कर रहा है, हल्का सा टेम्परेचर हो गया है, तुम रोजे को तर्क कर दो, खांसी लगी है, जुकाम हो गया, रोजा तर्क कर बैठो। इंसान को पहले अल्लाह की इबादत और ताअत से रोकने की कोशिश करता है, और अगर अल्लाह के फजल और रहमत से वो बंदा शैतान के इस वार से बच जाता है और सोचने लग जाता है कि मुझे अल्लाह की ताअत की जरूरत है, मुझे इबादत की जरूरत है, रमजानुल मुबारक के रोजे रखूंगा तो मैं अल्लाह का फरमा बरदार कहलाऊंगा, मुझे अल्लाह की इबादत की हाजत है, खुद मेरी जिंदगी में मेरी जात के लिए हाजत है, अगर अल्लाह जल्ला मजदू अपने फजलो रहमत से उसे शैतान के इस वार से बचा लेता है तो फिर यह दूसरा वार करता है। इसका दूसरा वार यह होता है कि बंदे को इबादत तो करने देता है लेकिन उसे सुस्ती और गफलत में मुबतला कर देता है। इंसान की तवज्जो कहीं और होती है और यह इबादत कर रहा होता, गफलत करता है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। फिर अगर यह इंसान अल्लाह के फजल से सोच ले कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल की इबादत कल सही, आज की इबादत आज कर लेता हूं, और यह इबादत कर लेता है तो गोया उसके वार से बच जाता है और सुस्ती और गफलत भी नहीं मचाता, जल्दी भी नहीं करता, तो फिर यह शैतान उस पर तीसरा वार करता है। कहता है ठीक है, तुम आज की इबादत कल पर ना छोड़ो, आज ही कर लो, लेकिन तुम जो आज की इबादत है वो जरा जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि तुम्हें एक दूसरा काम भी करना है। उसे काम याद दिला देता है, फुला कस्टमर से मिलना है, फुला पार्टी से जाकर मुलाकात करनी है, फुला शख्सियत को माल देना है या फुला से लेना है, किसी से पैसे लेने हैं या फुला को देने हैं, कोई ना कोई काम याद दिला देता है और उसकी तवज्जो उस तरफ लगाता है। और अगर अल्लाह की फजलो रहमत से बंदा इबादत में जल्दी न करे बल्कि इबादत को जैसे इबादत का हक है वैसे अदा कर लेता है और अल्लाह का फजल इस पर हो जाता है, तो फिर इस पर एक चौथा वार करता है, इससे इबादत में रियाकारी में मुबतला कर देता है, दिखावे में मुबतला कर देता है। और अगर बंदा अल्लाह की दी हुई तौफीक से इस वार से भी बच जाता है तो यही शैतान फिर इंसान पर एक और वार करता है, इसे खुद पसंदी में मुबतला कर देता है और कोशिश करता है कि लोगों पर यह अपनी इबादत की उम्दगी को जाहिर करे और उसे कहता है कि तुमने कितनी उम्दा इबादत की है, तुमने कितनी ज्यादा शब्बेदारी की, कई दिन हो गए शब्बेदारियां करते हुए इबादत करते हुए उसे रियाकारी में मुबतला न कर सका तो खुद पसंदी के अंदर मुबतला करने की कोशिश करता है। और अगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से इस बार भी महफूज रहे और खुद पसंदी में मुबतला होने से बच जाए तो फिर इसके ऊपर एक और हरबा इस्तेमाल करता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और शैतान के इस हरबे से बहुत अकलमंद और होशियार दिल शख्स के अलावा कोई और नहीं बच सकता। चुनाचे शैतान कहता है, क्या नेक बख्त इंसान, तुम लोगों से छुप छुप कर नेकियां करने में कोशां हो और अल्लाह तबारक व ताला तो तुम्हारी इन नेकियों को लोगों के सामने जाहिर कर देगा, अनकरीब वो तुम्हें लोगों में मशहूर कर देगा, तो लोग तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला का मुकर्रब बंदा कहकर याद किया करेंगे। इस तरह शैतान अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस बंदे को भी रियाकारी में मुबतला करना चाहता है। और अगर अल्लाह तबारक व ताला अपने रहमत व इनायत से इंसान को शैतान के इस हरबे से भी महफूज फरमा दे तो वो शैतान को ये कहकर जलील खार और नामुराद कर देता है कि मलऊन, अभी तक तो तू मेरे पास मेरे आमाल को फासिदो बेकार करने आया करता था और अब इन आमाल की इस्लाह और दुरुस्तगी के लिए आ रहा है, यानी पहले तो तू मुझे इबादत से ही रोक रहा था, आज इबादत तो करने दे रहा है, अब मुझे खुद पसंदी में तू मुबतला कर रहा है और रियाकारी के अंदर मुबतला कर रहा है ताकि लोगों के सामने मैं दिखावा करने लगूं। बंदा जब उसके इस वार को समझ जाता है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से उसके इस खतरनाक हरबे से भी बच जाता है तो फिर उस पर ये एक और वार करता है, तो वो इंसान के पास आकर उसे कहता है कि तुझे आमाल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इंसान के नेको बद होने का फैसला तो रोजे अव्वल से हो चुका है, यानी उसकी तकदीर के ऊपर जर्ब लगाने की कोशिश करता है, तकदीर में उसे अवहाम और वसाविस में मुबतला करने की कोशिश कर रहा है कि हर बंदे नेक और बद होने का एतबार तो रोजे अव्वल से है, ये फैसले तो हो चुके हैं, उस दिन जो बुरा होगा वो बुरा ही रहेगा और जो अच्छा और नेक होगा वो नेक ही रहेगा, इसलिए अगर तुझे नेक बख्त पैदा किया गया है तो अमाल को छोड़ना तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, यानी अगर तुझे लिख दिया गया है कि इसका इंतकाल नेकों में होगा तो तू अमल क्यों कर रहा है, तुझे अमल की जरूरत ही नहीं है, और अगर तुझे ये लिख दिया गया है कि इसका खातिमा बुरा होगा या ये फुसाक में गिना जाएगा, गुनाहगारों में इसका खातिमा होगा, ये कल गुनाहगार होने की वजह से जहन्नुम में जाएगा, तो कहा फिर तुझे नेक अमल करने की जरूरत क्या है, अपनी जात को इतनी मुशक्कत में क्यों डाल रहा है। अगर अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से इंसान को शैतान के इस वार से भी बचा लेता है तो इंसान शैतान मर्दूद से यूं मुखातिब होता है कि मैं तो अल्लाह तबारक व ताला का बंदा हूं और बंदे का काम यह है कि वो अपने आका व मौला के अहकाम बजा लाए और अल्लाह तबारक व ताला सारे जहान का परवरदिगार है, जो चाहता है करता है और जो चाहता है वो ही हुक्म देता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली फरमाते हैं, ए लोगो तुम ख्वाब गफलत से बीदार हो जाओ, शैतान के हीलों से होशियार रहो, हर वक्त अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहो और शैतान मरदूस से उसी की पनाह मांगते रहो, क्योंकि तमाम मामलात उसी के कब्जा व कुदरत में है और वही तौफीक अता फरमाने वाला है। गुनाहों से बचने और ताअत व इबादत करने की ताकत अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से ही मिलती है। लिहाजा मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान से ताल्लुक रखना शैतान के तमाम हीलों से इंसान को महफूज कर देता है और बंदे की कामयाबी का जरिया बन जाता है। न सिर्फ इस दुनिया की कामयाबी बल्कि उखरवी कामयाबी का भी जरिया बन जाता है। आज समझ जाइए, कुरान से अपना कनेक्शन मजबूत कर लीजिए, अल्लाह जल्ला मजदूहू हिफाजत फरमाएगा और शैतान लईन मरदूद के तमाम वार खाली चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिला।